राम।
यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 21 मई 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम
नारायण राम 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 राम। कोई सार बात लिखा
तो नरसिंह मेहता को भगवान शंकर गोलोक में ले गए और भगवान के दर्शन हो गए, फिर भी पुत्र मरना और धन का भाव रूपी कुकर्म।
ये एक बात नहीं है कि भगवान मर जाए बेटो मरे को नहीं, धन भाव है को नहीं, शरीर मीरो गुजारे बिल्कुल फालतू है। इसे क्या संबंध है? भगवान के मिलने से तत्व ज्ञान से कल्याण हो जाए ये बात है। अब धन मिल जाए नहीं मिल जाए पढ़ियो क्या है? सुत दारा हर लक्ष्मी पाकी पापी के भी हो गए तो पापी से पापी की बोलते हैं क्या पाकी के भी हो, हम तो कहते हैं सुत दारा लक्ष्मी पापी के ही हो। आपस करने वाली है। अच्छा आदमी क्यों उसे आप होता? अभी लक्ष्मी बन रहे क्या?
ये भारत जी ये प्रश्न था कि आप जो तत्व की प्राप्ति बताते हैं, करण निरपेक्ष साधन से जो तत्व की प्राप्ति बताते हैं, तो वो तत्व की प्राप्ति में निष्ठा तो कैसे हो? और दूसरा प्रश्न ये है कि चैतन्य महाप्रभु आदि लोगों ने प्रेम को पंचम पुरुषार्थ माना है, तो वो पंचम पुरुषार्थ में प्रेम भी इसी में हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा?
ठीक नारायण 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 परा कृष्ण वदवंदम परम ब्रह्म राक्ति सौंदर्य सर्वस्वंदम प्रपन्न पारिजाताय श्री ज्ञात मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदूहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितकरान्नवनीतदाघात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधिरोष्ठात् ूणेन्दुसुन्दरमुखादरिन्दनेत्रात् कृष्णात् परां किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः परमात्मनि नमस्ति गोविन्दाय नमस्ति नारायण 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 राम 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 राम। कर्ण निरपेक्ष कहने का तात्पर्य समझे आप, मेरा आग्रह नहीं कोई किसी तरह का भी। सच्ची बात यह है प्रकृति परमात्मा की प्राप्ति होने पर ये प्रकृति और प्रकृति का कार्य संसार से इससे संबंध विच्छेद हो जाता है। वो शुद्ध धारा लक्ष्मी हो और न हो कोई बात नहीं है, इससे संबंध भी छेद हो जाता है। इसमें महत्व बुद्धि हट जाती है और ये परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति के प्रकृति क्रियति करती रहती, हरदम कुछ न कुछ चलती रहती, प्रकृति का स्वभाव है। महासर्ग में भी इसकी क्रिया होती है, महाप्रलय में भी इसकी क्रिया बंद नहीं होती। सर्ग में प्रलय में महासर्ग में महाप्रलय में ये परिवर्तनशील है प्रकृति। परिवर्तनशील प्रकृति से संबंध विच्छेद होने से अपरिवर्तन तत्व है उससे संबंध होता है। तो परिवर्तनशील प्रकृति से ऊंचा उठने के लिए हम कहते हैं कि कर्ण निरपेक्ष साधन बढ़िया है, कर्ण सापेक्ष बढ़िया नहीं होगा। तो कारण जितने हैं कि वो सब प्रकृति का कार्य है। प्रकृति के कार्य का सहारा लेगा तो प्रकृति से अतीत कैसे होगा? प्रकृति गर्ज रहेगी, जिसका सहारा लेकर हम चलते हैं वो तो हमारे साथ रहेगा। इसमें से वो आप कृपा करके अच्छी तरह समझ जाए और फिर इसमें शंका करे तो विषय बहुत खुलेगा, साफ हो जाएगा। जो जो शंका पैदा होती हो वो शंका करें तो बहुत लाभ होगा। लाभ उसको होता जो अनुभव चाहता है, विद्या पढ़ना चाहता है, विद्वान बनना चाहता है, वो तो एक धनी बनने की चाह की तरह है। मेरे धन हो जाए, लाख रुपया करोड़ कुछ हो गए, धनवान हो जाऊं। इस तरह से विद्या पढ़ करके वो एक धनवान होता है, जैसे वो एक परिग्रह है, ऐसे विद्या भी एक परिग्रह है और कुछ नहीं है, इसमें लेना देना नहीं है। विद्या विवादाय, धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीड़नाय, खलस्य साधो विपरीत जैसे ज्ञान आय, उसमें भी काम आ जाए। ज्ञान में भी काम ले सकते, अभिमान में काम ले सकते, पतन में भी काम ले सकते, उसमें अधिक संपत्ति है, धन है। कोई धन बढ़िया चीज नहीं है, और धन का खर्च करना ही कोई बढ़िया चीज नहीं है। ये तो टैक्स की तरह है, धन खर्च नहीं करता है तो टैक्स मारता है, वो खराब काम करता है, अपराध करता है, ये कोई बढ़िया चीज थोड़ी है। ऐसे विद्या है उसे अभिमान होगा, बड़ा गांव घमंड होगा, गर्व होगा, और फिर बहम पड़ जाएगा। सुबह बताए थे ऊंट मर जाएगा, बिल्ली की जगह ऊंट मर जाए, बिल्ली को तो लकड़ियों कर फेंक दे पर ऊंट तो निकाला जाता थी। तो विद्या का अभिमान ऊंट मर गया इतना है, बहुत खराब चीज है। क्या चीज खराब? अभिमान। मैं विद्या की निंदा नहीं करता हूँ, धन की भी निंदा नहीं करता हूँ, पर धन से अभिमान होता है उससे विद्या से अभिमान कम नहीं होता है। कोई भी किसी तरह से गाना बजाना भी बढ़िया जानता हूँ मैंने, बहुत बढ़िया आता है, तो अच्छी बात। गाना बजाना भगवान में भी लगा सकता है, संसार में भी, और कोरो सीख ले तो अभिमान आएगा। कोई गुण कैसे ही गुण अभिमान आ जाएगा, वेदों को शास्त्रों को पुराणों को पढ़ रहेगा ये अभिमान आ जाएगा। एक चलते बिल्ली अलमारी हो जाएगी और क्या होगा? ये बात है। तो प्रकृति का कार्य है, वो प्रकृति के कार्य का सहारा लेगा तो प्रकृति का सहारा तो आप साफ हो गया। ये बात समझ आई नहीं आई? प्रकृति के कार्य का सहारा लेगा तो प्रकृति का सहारा हुआ कि नहीं? भगवान ने गीता में बहुत विलक्षण बात कही है, मैंने सुनाई है, सुनी है, सुनाई है आपको। भगवान के रामनाधित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप कौन थे न करोति न लिप्यते। शरीर में स्थित रहता हुआ आत्मा कर्ता नहीं बनता है, लिप्त नहीं होता है, शरीर में रहता हुआ भी। और पुरुष व प्रकृतिस्थ ही भूंगते, प्रकृति से भोक्ता बनता है। बिल्कुल उल्टी बात कही है भगवान ने। जो भोक्ता बना प्रकृति में से भोक्ता होता है, शरीर में से जो भोक्ता होता है, शरीर में से न करोति न लिप्यते, प्रकृति तो ही भोगते। तात्पर्य क्या है इसका? कि शरीर के साथ संबंध जब तक है, मात्र प्रकृति के साथ उसका संबंध है। प्रकृति के कार्य छोटा सा उसे संबंध ले लिया, सबके साथ संबंध हो गया। जिस परिवार की कन्या को आपने अपनी स्त्री स्वीकार कर लिया, विवाह कर लिया, संपूर्ण परिवार के साथ संबंध हो गया। कोई सास है, कोई ससुर है, कोई साला है, कोई साली है, कोई सलाहली है, कोई कुछ है, कुछ ये नानी सास रहा है, सास रहा है, बहुत लंबा हो गया। धी मुएर जवाई चोर, जब लड़की मर गई, जयराम जी जरा कौन पूछे? अब कुछ दवाई जीवित है? संपूर्ण परिवार सब छोड़ देगा। ऐसे प्रकृति का एक शरीर है, प्रकृति का एक कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है, इसमें किसी के साथ भी संबंध हो गया, प्रकृति संपूर्ण के साथ संबंध हो गया उसका। ऐसा नहीं मन बुद्धि संबंध किया, ऐसा मनन किया, बुद्धि से निश्चय किया, निश्चय कर उसके निर्देशन किया, जल्द समाधि लगाई, समाधि विकल्प निर्विकल्प तक लगा समाधि, तब तो प्रकृति का संबंध है। अरे प्रकृति का संबंध है तो प्रकृति से अतीत कैसे जाएगा, और प्रकृति का कार्य प्रकृति से अतीत कैसे लेकर जाएगा। प्रकृति तक नहीं पहुंचता, प्रकृति का कार्य कारण तक नहीं पहुंचता, प्रकृति तक नहीं पहुंचता, प्रकृति से अतीत वो कैसे पहुंचेगा। ये कर्ण ऐसा, ये बाह्य कर्ण है, कर्म इंद्रिया है, ये ज्ञानेन्द्रिया है, ये अंतकरण है, ये तेरहवीं करण है। तो कर्म सब प्रकृति का कार्य है, कर्ण किसी का ही कर्ण का आश्रय, कर्ता को आश्रय लो, कार्य का आश्रय लोगे, वो प्रकृति का आश्रय है। और वो आश्रय होकर तो उसका त्याग कैसे करोगे, आश्रय करना पड़ेगा। सीढ़ी का आश्रय लेकर ऊपर चढ़ोगे तो सीढ़ी का त्याग कैसे करोगे। ऊपर पहुंच जाओ तो सीढ़ी की जरूरत नहीं रहेगी, तत्व में पहुंच जाओ तो प्रकृति के कार्य की जरूरत नहीं, प्रकृति की जरूरत नहीं रहेगी, प्रकृति से संबंध विच्छेद हो गया। नहीं तो प्रकृति महान तत्व अहंकार तस्मत गोड़ वेदांत में जो प्रक्रिया का वर्णन है, इससे ये उत्पन्न हुआ, ये उत्पन्न हुआ, ये कारण है, कारण है, ऐसे ये सब बताने का तात्पर्य क्या है कि प्रकृति के साथ संबंध है, ये तात्पर्य है। प्रकृति से उत्पन्न होते हैं सभी गुणा, प्रकृति संभव, प्रकृति से उत्पन्न है सभी। तो किसी के साथ संबंध रखना है वो प्रकृति के साथ संबंध रखना है, और संबंध रखने में बंधन होता है, सहारा लोगे कर्ण का तो सहारा लेने पर तो प्रकृति का जबरन संबंध होगा ही, कि ये बंधन सहारा कैसे लोगा, उसका महत्व अंतकरण में कैसे नहीं होगा आपके, और उसका महत्व तो संसार का महत्व ही तो बंधन कारक है, संसार थोड़ा बंधन कारक है, रुपया बंधन का अर्थ रुपयों का महत्व है, वो झूठ कपट बेईमानी छलसाजी जालसाजी तरह तरह के विश्वासघाती और अधिक दोष उसमें आते हैं। कब के विश्वास आपने रुपयों के साथ ले लिया, अब विजय कर विजय राम जी थी, अब सब दोष आवेंगे। उसको अर्थ अनर्थ हेतु नाम अर्थ है, धन है, अनर्थ अनर्थ होंगे। ऐसे प्रकृति का किसी कारण किसी कारक के साथ, कर्ता के साथ, कर्म के साथ, करण के साथ, संप्रदान के साथ, अपादान के साथ, अधिकरण के साथ संबंध हुआ तो वो प्रकृति के साथ संबंध है। प्रकृति के सहारे से चलेगा वो प्रकृति का त्याग कैसे करेगा। इस वास्ते आरंभ से ये बात होनी चाहिए कि परम पात्र तत्व तो प्रकृति से अतीत है, सगुण भी अतीत है, निर्गुण भी अतीत है। ये भी नहीं, सगुण तो प्रकृति के वश में है, प्रकृति वश में नहीं है, प्रकृति सगुण परमात्मा के वश में है, वो प्रकृति के वश में नहीं है। सिर जी ने किसी कहा कि प्रकृति एक धेनु है, उसे जीव ऋषु दोनों बस रहे हैं। सिर जी का नहीं, जीव तो बस रहा है पर तो परमात्मा ईश्वर हो बस रहा नहीं है, सांड है वो, बसा कैसे प्रकृति का बसला, प्रकृति के बस में, प्रकृति बस में होगा ईश्वर होगा, वो शासक होगा, मालिक होगा, वो उसका बसला होगा, है ही नहीं ये बात। तो साढ़ प्रकृति की अधिपति है, प्रकृति स्वाम अवस्था अधिष्ठा संभव में, प्रकृति स्वाम अवस्थ्य विश्व पुनः पुनः पूछा प्रकृति बसात, प्रकृति के बस में उनको बार बार रचना करता हूँ। तो प्रकृति का ही जरिया आप विचार को ठीक संबंध देख करके, अब इसमें शंका है तो ठीक करो आप, फिर आगे चले, जितनी शंका होती हो खुल कर करो, सामने छाती ठोक कर करो, यही बात कैसे कहते हो, ऐसा हो नहीं सकता, कैसे कहते हो, ऐसे जोर से कहो, मेरी बात को काटो, उससे बातें और आवेगी। बहुत विलक्षण, मेरे को क्या पता आप कहाँ अटके हुए हो, आप बात बोलो तो पता लग जाएगा कहाँ है, कहाँ बीमारी है आपकी, पता लग जाएगा। प्रकृति बिना समझे मत बोलना, समझो कह रहे प्रकृति को समझ करके फिर बोलो। तो इस वास्ते कारण निरपेक्ष साधन कहा, कर्ण को काम में ले लो मना नहीं करता, विद्या को काम में ले लो मना नहीं करता, धन को भी काम में ले लो मजा नहीं करता, शरीर को भी काम में ले लो मना नहीं करता। मैं इस बात से कर्ण रहित नहीं कहा है, कर्ण निरपेक्ष, कर्ण की गर्ज नहीं है, कर्ण की गुलामी नहीं चाहिए, धन की गुलामी नहीं चाहिए, शरीर की गुलामी नहीं चाहिए, जाति की वर्ण की आश्रम की गुलामी नहीं चाहिए। शरणा जी को मैंने कहा, शरणा जी आप बुद्धि के बड़े पहलवान हो, कोई आप पछाड़ दो पराग साहब ऐसे बुद्धि के पहलवान हो, बुद्धि बहुत तेज है आपकी, तो बुद्धि तेज होना कोई दोष नहीं है, बुद्धि की गुलामी तेज है, ये उत्तर दिया। बुद्धि की दासता है वो पतन करने वाली है, बुद्धि तेज हो कोई कोई बात नहीं, ऐसा धन होना कोई पाप थोड़ा ही है, परंतु धन का अभिमान हो जाएगा, बुद्धि का अभिमान हो जाएगा, गुण का अभिमान हो जाएगा, वो तो पतन करेगा ही। दम्बोधर को अभिमान संपत्ति है, मैं कहता हूँ देवी संपत्ति का गुण दिया सत्य बोलना, सत्य भाषण आपने किया, बिल्कुल सत्य छोड़ते नहीं, पर तो मन में मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये असत्य बोलने वैसे ही उसी मैं श्रेष्ठ हूँ, तो पतन करेगा आपको, सत्य भाषण पतन करेगा, तो सत्य भाषण कथन नहीं करता है, सत्यता का अभिमान पतन करता है, ऐसे अभिमान पैदा होगा ही, उन्हें मैंने कैसे रह जाएगा। आप में कोई विशेषता होगी, दूसरे से विशेषता दिखेगी तो अभिमान पैदा होगा ही, अब इनका त्याग करो विशेषता क्या हुई साहब, मैं चलते फिर आया क्या अभिमान हुआ, पेशाब कर दिया सर बड़ा अभिमान हो गया, क्या अभिमान हुआ, पेट हल्का हो गया, अच्छी बात है, निरोगता होगी, ऐसे प्रकृति के प्रकृति कार्य तो टट्टी है, ये टट्टी फिर जाना चाहिए, सुध जाएगा, अब उस टट्टी का ही सहारा लेगा, वो महाराज टट्टी के संबंध से कैसे अतीत होगा जिसे सहारा ही हुई है। इस बार से कर्म निरपेक्ष कहता हूँ मैं, इस विषय को खूब समझो आप, परसों अपने बातें हुई थी ना कारकों की, किस तरह क्या थी, इन्हें ठीक समझ गए, ये तो हरेक भाई बहन तो समझते समझ सकते नहीं, जिनके अध्ययन किया वो समझ सकता है, मुझे नहीं समझ सकता, जिस विषय में प्रवेश ने कैसे समझे, आप अंग्रेजी बात मेरे को समझाओ मैं कैसे समझूंगा, अंग्रेजी बाइबल की बात समझाओ, कुरान शरीफ कोई आयत समझाओ मेरे को, कैसे मुझे अकल में नहीं आती, मैं समझता ही भाषा ही नहीं समझता, कैसे पता होगा। ऐसे इन विषय का गहरा अध्ययन जिसका है व्याकरण का, उसको बताओ साफ साफ दिखेगा, और वो कान पकड़ मानेगा, नहीं माने का तो आओ आओ मेरे सामने, अच्छे अच्छे विद्वान आ जाओ, आचार्य आ जाओ व्याकरण के, बस बताओ वो मान लेगा, जो वो तो मानते थे बेचारे और सार दे दिया कर्ण का, और कर्ण का सहारा लेकर समझते हैं, उसमें उत्थान हो जाएगा, कर्ण का सहारा प्रकृति का कार्य संसार इसमें सहारा है, प्रकृति से अति तत्व तक कोई कर्ण कोई करता कर्म किया कोई नहीं पहुंचता, न करता है न कर्म है न कर्ण है न संप्रदान है अपादान है अधिकरण, कोई कार्य को नहीं, कार्य सब प्रकृति का कार्य है, क्रिया और पदार्थ ये दो प्रकृति के कार्य है, पदार्थों में फंसेगा राग होगा तो फंसेगा, और क्रिया में फंसेगा तो फंसेगा, अविद्या एक क्रिया है सीख ली, तो सीखी हुई और होती है अनुभव और होता है, ये एक से देखते हैं, विद्वान पढ़ जाए उसको समझा मेरे विद्वान बन गया, विद्वान नहीं बनेगा, अक्षरों का विद्वान है इसमें आदर करेंगे हम, कि तुम भी शास्त्रों की बात हो तो उसे पूछेंगे सलाह भी लेंगे उससे शास्त्रों की, परंतु तो मुक्त कैसे हो जाएगा, मुक्त नहीं हो सकता वो शास्त्रों के जाल में फंसेगा, दो जाल बताया भगवान ने, क्या ये जाती है मोह कलिलम, बुद्धि बिल सही सती और श्रुति में प्रतिपन्ना से निश्चला समझ अचरा। तो ये पहली तो है मोह कर संसार का, या फिर है श्रुति प्रतिपत्ति तरह तरह के साथ, कोई ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, अष्टांग योग है, लय योग है, मंत्र योग है, राज योग है, अनासक्ति योग है, कई तरह योग है। इसके सिवाय सांख्य है, न्याय है, वैशेषिक है, योग है, पूर्वी मानसा है, उत्तरी मानसा है, दर्शन है, ये आस्तिक है, फिर नास्तिक दर्शन है, चारवाकाली के दर्शन दर्शन नास्तिक दर्शन है। इन दर्शनों के बीच में उलझेगा परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, फंसेगा, यही सीधी बात है। इस वास्ते ये तो जाल है, नहीं फंसना अच्छा है इसमें, ऐसा ना फेर हो जाएगा। बासठ का ऐसा, ये शंकराचार्य ने लिखा ऐसा, एक तो मधुसूदनाचार्य ने लिखा ऐसा, एक तो शंकरानंद में लिखा ऐसा, ये तो पंचदशी में लिखा ऐसा, एक तो विचार सागर में लिखा है, एक तो मृत्यु प्रभाव में लिखा है। अच्छी बात है, लिखा तो करो भाई, तुम्हें लिखा पे देखना है तो अपना कल्याण करना है, अपना कल्याण करना हो तो इन्हें नजीक ही मत जाओ, नमस्कार कर दो दूर से, ऐसे दर्शन कीजिए अल्पोष्मादेश करो, तो बच जाओगे नहीं तो फंस जाओगे। जैसे मकड़ी जाड़ा कर जाड़े में फंस जाती है, रेशम का कीड़ा होता है रेशम करके फंस जाता है, उबाल कर उनको मार देते हैं, रेशम ले देते हैं लोग, ये दशा होगी, वो पड़े क्या है। अच्छा अब बात कर दू जी, संकता भी की नहीं कोई, तो कर्ण निरपेक्ष कहने का मतलब ये है। तो कर्ण निरपेक्ष कहना क्यों, कर्ता निरपेक्ष, कर्म निरपेक्ष, संप्रदान इसे निरपेक्ष कहते, कर्ण निरपेक्ष क्यों कहा, एक कर्ण ने क्या अपराध किया, तो मैं तो सबसे निरपेक्ष कहता हूँ, मन कर्ण क्या होता है, साधक तमम कर्णम, क्रिया के करने में अत्यंत उपकारी हो उसका नाम है कर्ण, तो अत्यंत क्रिया की स्थिति में होती है, और क्रिया से अतीत तत्व में कर्ण क्या करेगा, क्रिया करने में साधकतम है कर्ण, तो भी तत्व कर्ण निरपेक्ष है, क्योंकि कर्ण तो हम भी निरपेक्ष मानते हैं, निरपेक्ष मानते हैं उसकी अपेक्षा है, बुद्धि की अपेक्षा है, बुद्धि की स्थिरता की अपेक्षा है, मल विक्षेप आवरण तीन दोष है उनके दूर करने की अपेक्षा है, मल अनेक पाप है वो मल है, विक्षेप चंचलता वो दोष है, आवरण दोष है अज्ञान का, इनको दूर करो, कैसे करो, बुद्धि से विचार करके करेंगे हम, श्रवण से, मनन से, निर्ध्यासन से, संशय है, प्रमाणगत संशय है, प्रवेगत संशय है, विपरीत भावना है, इसको दूर करेंगे, सीख जाओ, दूर कुछ होगा नहीं, सीख जाओ, बहुत सीख जाओगे, बातें बहुत याद हो जाएगी, मैं बोलूं तो बोल जाओगे, व्याख्यान दे दोगे, पर बंधन वैसे ही, बंधन तो टूटेगा नहीं, मैंने पढ़ाई की है इस बारे में, मेरे को पता है इस बात का, कहाँ तक पढ़ाई चलती है, कहाँ तक चलती है, मैं साफ अपढ़ होता ना, जैसे भाई बंद की बात पूछे नहीं बता सकता, कुरान शरीफ की बात पूछे नहीं बता सकता, ये क्यों भी पढ़ा हुआ नहीं है, कभी भी सही तो मैंने पढ़ाई की हुई है, परीक्षा दी हुई है, इस वजह से मैं जानता हूँ कहाँ शुरू होता है, कहाँ समाप्त होती है, क्या ऐसा नतीजा होता है, वो सब जानता हूँ, मेरे को पता है, इस बात से आप कहता हूँ, इस बात कर्ण निरपेक्ष कहने का ये मतलब है। अब आगारी बात रही, दूसरा जो प्रश्न रहा कि प्रेम को पंचम पुरुषार्थ माना है मधुसूदनाचार्य, जो अद्वैत सिद्धि के निर्माता है, अद्वैत सिद्धि, अद्वैत अद्वैत वीथि पथगैर उपास्या स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा, मधुसूदनाचार्य लिखते श्लोक है उनका, अद्वैत वीथि पथगैर उपास्या, अद्वैत के मार्ग में चलने वाले जो पथिक है उनके हम उपास्य देव है, हम मामूल पड़े हुए नहीं है, अद्वैत वीथि पथ के ही उपास्या, अरे स्वानंद संघासन लब्ध दीक्षा, स्वानंद जो है स्वतंत्र सर्वथा वेदांत के उसमें हम दीक्षित है, सिंहासन आरूढ़ है उसमें भी, मैंने सठे न के नापी हठे न दासीकृता गोप वधु बिटे न, वो गोपियों के यार ने हमारे को भस्म कर लिया, ये कहा मामूली नहीं थे, अद्वैत बीती पथ के उपास्या स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन। उस मूर्ख ने, उस गया चलाने वाले ग्वालिये ने, जंगली आदमी ने सठे न के ना भी वही हटे न जबरदस्ती कर रही है। हम थोड़ी जाने वाले बक में, किसी के बक में जाने वाले हैं, पर दूसरे दासी करता न दास दासी करो दास बना लिया हमारे को। वो वधु बिटे न वो गोपियों का देवचारी जार वो कहते बिट, वो वधु बिटे न गोपियों का जार, जार होता है स्त्रियों का व्यभिचार करने वाला, उसका नाम बताया भगवान ने, नाम बताया दासी कृषा गोप वधु बिटेन। तो लिखने पे प्रेम की बात, उन्होंने भक्ति रसायन में भक्ति का वर्णन किया है, परंतु हमारे वो वर्णन भी गले नहीं उतरता है। वो तो शुद्ध किया है ना वर्णन, वो भी ठीक उतरता नहीं, हमारे घर नहीं उतरता है। मैंने उनसे भी बातें सुनी हुई पढ़ी, मैंने भक्ति स्थान को पढ़ा है। इधर जो जीवन मुक्ति विवेक है उसको मैंने पढ़ा है, मनन किया अच्छी तरह से, प्रत्येक मैंने पंचदशी मैंने पढ़ी है, पढ़ाई है, विचार किया है, परंतु तत्व जो है इससे एक बहुत विलक्षण है। ये विद्या में काम है, विद्या में काम आ जाएगा, पर परमात्म तत्व में कैसे काम आ जाएगा? हाँ, इनका उपयोग लेओ, क्योंकि जो सब कर्तव्यादिक संपूर्ण इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का उपयोग है, ज्ञान इंद्रियों का उपयोग है, अंतर्ज्ञान का उपयोग है, पर इसके बल पर हम परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाएंगे, असंभव बात है, हमारी जस्ती ही नहीं। अब जो प्रेम कैसे होता है, तो ये कर्ण निरपेक्ष साधन करने से, कर्ण को काम में लेना कोई दोष नहीं है, मन कर्ण की अपेक्षा रखना, कर्ण की जरूरत रखना, कर्ण की आवश्यकता समझना, कर्ण की गुलामी सहना, कर्ण की दासता अपने में रखना, कर्ण बड़ी भारी बढ़िया चीज है ऐसा समझना, ये बंधनकारक है। इस बात से कहूँ कर्ण रहित नहीं कहता हूँ, कर्ण निरपेक्ष कहता हूँ। कर्ण काम में लेना है, शरीर को भी काम में लेना है, इंद्रियों को काम में लाना है, मन बुद्धि को काम में लाना है, मन काम में लाना, नौकर से काम करे जो काम लेना है कि मालिक बना लेना, उसको इसलिए बना ले, गलती है। अच्छा, अब कर्ण निरपेक्ष साधन से परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। तो कर्ण निरपेक्ष पहले तो कर्ण से ही करोगे, बिल्कुल कर्ण के बिना कैसे राम 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 राम, बिना कर्ण कैसे होगा? चिंतन करे हे नाथ करे कैसे होगा? पुस्तक पढ़े, भक्तों का चरित्र पढ़े, भगवान का चरित्र पढ़े, बिना मन बुद्धि की इंद्रियों के नेत्र आदि के बिना कैसे होगा? तो ये कर्ण सापेक्ष नहीं है, ये कर्ण साथ में सहायता हमारे कर दे, जूती की अपेक्षा नहीं है, हमारे तो कांटा ना लगे इसी जरूरत खड़ा हुआ से, कुछ भी हो, अब जूती है पैरों में पैसा लगे उसको सिर पर रखे, सिर पर ले चलो, जूती बड़ी आवश्यक है सर, तो इसको सिर पर उठा ले, अरे सिर में नहीं, जूती पैर में काम नहीं किए, इसमें कर्ण आदि काम की चीज है, पर जूती की तरह है, इष्ट देव तरह नहीं है, ये मतलब है इसका। अब इसमें कहीं शंका हो अभी पूछ सकते हो, अभी चुप रहो और लिख लो, चार फेर मेरे से पूछो।
संबंध हटाने में कर्ण की अपेक्षा नहीं
है। हाँ हटाने में क्या संबंध है? त्याग के लिए तो बहुत सामग्री लेनी पड़ती है, पर त्याग करके साथ ऊर्जा क्या सामग्री करनी पड़ती है? कोई ब्राह्मण भोजन करना पड़ता है, जान जीवानी पड़ती है, गांव जीवाना पड़ता है, कुछ धन दक्षिणा लेनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है? ब्याह करने में सब करना पड़ेगा, सब नए विचार करना पड़ेगा, आपको ब्याह करते हो आप, मांगने वाले आएगा सा थाना ब्याह होगा मांगेगा, कुछ ढोली आएगा मांगेगा, अरे मारो ब्याह हो। एक ही माँ मर गई तो ढोली आया, कंजर आया, कंजर आया, वो कहे थारी माँ मरी है तो मारे नुकसान हो गया थे, मांगो क्या, कहीं बात रहो मारे कोई लाभ हो जल से ही मांगो, मारे को माँ मर गई कि रुपया लाओ से माँ नहीं देगी, थे तन जी माया तन किया मा नहीं देव, तीसरा नेक सर है बन छोड़ दे जीवन, क्या नेक सर लगे, टट्टी फिर नेक सर लगेगा, टैक्स लगेगा, तू टट्टी फिर जाए अल्लाह, इतना टैक्स लगेगा तेरू, क्यों तू टट्टी फिर गया, इसे त्याग त्याग का कोई चर्च नहीं है। त्याग से जितना लाभ होता है उतना उनके संग्रह से नहीं होता। विद्यारण्य स्वामी थे तो राजा के मंत्री माधवाचार्य, तो वो उन्होंने अनुष्ठान किया गायत्री का धन के लिए, दो तीन की अक्ते की याद नहीं है मेरे को, कई पुरुष चरण किए गायत्री के कि धन मिल जाए, नहीं मिला तो उसने साधु हो गए, त्याग कर दिया, विद्यारण्य स्वामी हो गए, त्याग कर दे, मैं धन चाहता ही नहीं। तो विद्या सड़क खास लक्ष्मी जी प्रकट हो गया कि बेटा मांग क्या जाए, तो माँ अब मेरे क्या चाहिए, मेरे से धन की जरूरत थी तब तो आपकी उपासना करी, उस समय तो आपने दर्शन दिए नहीं, अब मैं क्या करूं, मैं तो छोड़ दिया, जो संन्यास ले लिया मैं छोड़ दिया, पैसा छूता ही नहीं है, मैं अब लक्ष्मी क्या करूं मैं। तब उस शहर पर मोरों की वर्षा हुई, वो तो मैं चलता नहीं, क्योंकि मेरे पहले क्यों नहीं आई तू, कि पहले तेरी इतनी ब्रह्म हत्या थी, तो एक एक पुरुष में इतनी इतनी ब्रह्म हत्या हटी, देखा देख आग लगी जलती हुई देखी, तेरी हत्या जली है, वो देर तक नहीं गया तेरा अनुष्ठान, सार्थक हुआ है, और रह का पाप त्याग से जल गया, वो अनुष्ठान नहीं जलता, इतना त्याग से जलता है, सब का त्याग कर दिया, उसे जो शुद्धि आती है निर्मलता आती है वो पुरुष तत्वों से नहीं आती, तब मैं प्रकट होगी। तो त्याग की बात ही निरा नहीं है, त्याग शांति अनंतरम, तो त्याग किसका, अपनी संपत्ति है, अपना सहारा है, अपने उसका आश्रय है, उसकी व्यवस्था है, उसका त्याग करना है, पैसों को थोड़ी त्याग करना है, कोई स्त्री पुत्र का त्याग भी उनका गुलामी है, मन में दासता है, उनकी आवश्यकता है हमारे, ये नहीं चाहिए, फिर रह चाहे स्त्री पुत्र रहे, धन रहे, संपत्ति रहे, राज्य रहे, क्या करेगा, बड़ा के राज्य था, बंसन की परवाह क्या थी राज्य की, कोई परवाह नहीं, निर्लेप थे, तो ये होना है, और वो करके निर्लेप रहना कठिन होता है, अलग रहना तो अलग रहना सुगम है, माने संपत्ति हो सब स्त्री पुत्र हो तो उसमें लिप्त न हो, बहुत विरले होते हैं, छोड़कर जब है त्यागी संता, त्यागी शोभा जगत में करता है सबको, हरिया गृहस्थी संत का भेदी बिरला हो, गृहस्थ में और संत में ऊपर से तो दिखे भीतर से बिल्कुल राग, ऐसा भेदी बहुत कम सी होते हैं, बस छोड़ करके जय सुगमता पर आपसे मिठी छूटा, बस अपने मन में राग नहीं बात नहीं आपस मिठी। अब चलो अपने कर्ण निरपेक्ष, इस वास्ते कहा मैंने कि आपके कर्ण की गुलामी न रहे, इस वास्ते कहा कर्ण रहे, कर्ण से काम लो, उसी तरह से दास की तरह गुलाम करो, गुलामी मत करो, गुलाम भी हो जाए जैसे भगवान के बस रहा है, दशा के सांड है, वो तो प्रकृति का अधिपति है, मालिक है, प्रकृति का दशा कैसे है कि वो शुद्ध सत्व गुणमया है, वह उपाधि है ईश्वर की, और मलिन सत्व है वह विद्या है, वह उपाधि जीव की, कारण उपाधि रहे जीव, कार्य उपाधि रहे जीव, कारण उपाधि ईश्वर है, कार्य कारण का हित्व पूर्ण बोध हो शिष्य थे, ये कार्य वो कारण है, दोनों को उपाधि है, दोनों माया रूप जिनको जो बस रहा है, ये बस रहा मांगेगा ईश्वर की उपासना करेगा, वो प्रकृति से अतीत जाएगा, अरे प्रकृति के कार्यों की उपासना करता है, मन बुद्धि आदि की गुलामी करता है, जैसा कार्य कोणता हित पूर्ण बोध हो शिष्य से बातें करते हैं, ऐसी हमारे बैठी नहीं बात, इस बात हम तो कहते हैं आप करना तो आप करो, देखो तमाशा आप भी देख लो, हमने देखा है तुम भी देख लो। अब रही भाई कर्म क्या, जितने जो कारक है ये सब के सब प्रकृति के कार्य है, प्रकृति से अतीत तत्व नहीं, अतीत तत्व परमात्मा तत्व है, वो प्रकृति से बिल्कुल संबंध विच्छेद अतीत इससे अतिक्रमण करने होता है, योगी पर स्थान योगी होता है उसको अतिक्रमण कर जाता है वेदों को यज्ञों को दान को तप को तीर्थ को व्रत को सबको अतिक्रमण कर जाता है तब योगी होता है परमात्मा प्राप्त होता है तो इनको अतिक्रमण करना है इस गुरु में गर्व में फंसना नहीं है श्रुति में प्रतिपत्ति में फंसना नहीं है इससे ऊंचा उठना है इस बात कहते हैं अतीत होने से परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। परमात्म तत्व की जब प्राप्ति होती है उसमें प्राय करके और जो ये प्राज्ञ होता है जैसे जीव है ना जीव जीव तत्व में जो चेतन तत्व है उसकी प्राप्ति ही ब्रह्म की प्राप्ति है और चेतन का जो ममई वांश और अंश ही परमात्मा है उसमें जाने से प्रेम होता है तत्व ज्ञान होने पर प्रेम होगा। आज का कितने तत्व करो ना तो होता है ज्ञान न होता है प्रेम। पहले तत्व के जीवन मुक्त जैसे सनकादिक है नारद जी है भगवान शंकर है ये तत्व को जानने वाले हैं भगवान प्रेम में मस्त हो जाए तो फिर असली प्रेम पीछे होता है। एक भक्ति होती है पहले ज्ञान से पहले और एक भक्ति तत्व बोध होने के बाद में भक्तिया संजात या भक्तिया भक्ति से भक्ति पैदा हो होती है वो होती है प्रेमा भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति उसमें मैं रागानुगार रागात्मिका रागानुगार भक्ति में कई भेद है परंतु सिद्ध भक्तों में जो पर होती है वो बोधाद ऊर्धम द्वैतम अद्वैताद भी सुंदरम अद्वैत से भी सुंदर है वो अद्वैत मिठास वो नहीं है अद्वैत शांत आनंद है मस्ती है और उसमें उछाल वाला प्रेम वाला उबलता प्रेम से इस तरह से उछाला लहरा वाला प्रेम है वो प्रतिष्ठा वर्धमान है वो ज्ञान वर्धमान नहीं ज्ञान से शांति है आगे बस कुछ नहीं और प्रेम होने पर होता है तो वो प्रेम ज्ञान होने पर होता है पहले भी होता है सीधा ही ज्ञान होने पर भी होता है जैसे सनकादिकों का है नारद जी का है भगवान शंकर का है जीवन मुक्त जितने महत्वपूर्ण होते हैं आप देखो सबके सगुण का वर्णन आता है सगुण की प्रेम भक्ति पर तो वर्णन आता है। सनकादिक गए वैकुंठ द्वार पार में रोक दिया तब साप दे दिया भगवान भगवान है प्रधान भगवान नागर कहते हैं गलती करी साप दिया बहुत अच्छा किया तो भगवान के चरणों में चढ़ी हुई थी तुलसी नमस्कार किया सनकादिकों ने तो तुलसी की गंध हुई जिसमें हृदय में हलचल होगी सनकादिकों के जीवन मुक्त पुरुषों के बताओ वो हलचल संसारी विषय है जितने विषय भोग है उनमें सुगंधी है ये विषय जबरदस्त नहीं है संसार के और विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध तो रूप रस तक है जितना गंध इतनी जबरदस्त नहीं है वो गंध से मरा संक्षोभ मक्षर साबित चित्त तन्नो प्रातः भागवत माया है चित्त और चित्त में तो हलचल हुई और शरीर में रोमांस हो गया नेत्रमांस आ गए ऐसे विकार हो गए निर्विकार सनकादिकों के भीतर तो सगुण की तत्व की इतनी वृक्ष बात है सगुण से बढ़ करके है निर्गुण से भी बढ़ करके है ऐसी बात है। सहज विराग रूप मन मोरा थकित होते थे चंद चकोरा बताओ सहज विराग रूप है जनक का वो सनक ये क्या है महाराज ये दोनों बालक क्या है मुनि कुल निर्गुण पालक क्या है उनके गले में गजमुक्ता माला भी है ऐसी माला भी है गजमुक्तारी माला देगी दिन भी तो कोई राजकुमार होंगे बाबा जी को गजमुक्ता कहाँ पड़ा है अरे तुलसी की माला है अब राजकुमार तुलसी की माला क्या करे तो बाबा जी के साथ बाबा जी को वही माला है वही पहलो बेटा तो इस बार राजा को बैम पड़ा कि ये राजपुत्र है ऋषि पुत्र है मुनि कुल तिलक मुनिकुल के तिलक है अथवा नृपकुल पालक राजाओं के भी पालन करने वाले जो सब दुनिया का पालन करते उनके भी पालक है क्या बालक दो उनको क्या है जाके पूछता रहे तुम क्यों बोलते हो कि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरे को विराग करना नहीं पड़ता है, सहज विराग रूप मन मोरा थकित हो दिन चंद चकोरा। क्या बात है, तुम ठीक कहते हो, भगवान मुस्कुराए थोड़े, माया हास है भगवान का, माया के चुप रहो, माया बोलो पोल मत निकालो हंसे। तो कहते ये महाराज दशरथ के पुत्र है, मेरे साथ आए यज्ञ पूरा कराने के लिए आए हैं, अभी यहाँ धनुष देखने को आए। सच बात बदल दी। तो बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं के मन को महाराज क्षुब्ध कर दे। आत्मा राम गणा करसी भगवान का नाम है, आत्मा राम जो मुनि है जिनकी परमात्मा में ही मत रहते हैं, ऐसे गणों गण खेच लेता, उनके तत्व को खेच लेता है। ऐसा है भगवान का स्वरूप विलक्षण। तो वो विलक्षण अनुभव होता है, वह सिद्ध भक्ति होती है, प्रेम लक्षणा भक्ति होती है, उसके अधिकारी होते हैं। ये साधन भक्ति नहीं, साधन भक्ति तो विक्षेप को नाश करती है, इसमें भी बड़ी ऐश्वर्य, बहुत ऐश्वर्य है, पर ऐश्वर्य सब उसमें है, सब उस वो ज्ञान से भी अतीत है। ज्ञान ज्ञान तत्व ज्ञान हो जाए, भक्ति नहीं होगी तो भक्ति का अनुभव नहीं होगा। तत्व ज्ञान होने पर भक्ति के संस्कार रहेंगे तो वो भक्ति प्राप्त होगी। ज्ञान के बाद में उत्तर काल में होगी वो भक्ति, वो सजातीय भक्ति है। उस भक्ति में फिर विरह होता है, दो तरह का श्रृंगार, उसमें श्रृंगार है हास्य करुणा रोग वीर भयानक नौ रस होते हैं। उसमें छह रस माना है भक्ति में, छह रसों में भी ये संग होता है ना, श्रृंगार रस, संसार में श्रृंगार रस सबसे मुख्य माना है, श्रृंगार जो स्त्री पुरुष का संबंध होता है, वो श्रृंगार भगवान में वहां पर है। उसमें भी संयोग और वियोग दो तरह का होता है, संयोग में एक आने स्त्री पुरुष का संयोग होना है सुख होता है, एक वियोग में सुख होता है। वियोग में स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री को याद करते रहते हैं, ऐसे भगवान के संयोग का एक तो सुख है, एक वियोग का सुख है। चैतन्य महाप्रभु ने वियोग के सुख को अंगीकार किया है, वो विप्रलम्ब है, वो स्वीकार किया है और उसने उन्हें प्रेम किया है। जो रोते रहते थे हरदम, रोते रोते समुद्र में कूद गए, समुद्र में बस मिल गए, भगवान के लिए रोते थे वह। और न्याय के ग्रंथ लिखे महाराज, अच्छे से पंडित ही चक्राए जाए जैसे सब लिखे, विद्यापन पढ़ा के सब छोड़ करके भगवान में खींच गए। वो पढ़ाते थे, नाम ही पंडित थे चैतन्य महाप्रभु होंगे परमात्मा जी। तो वो भक्ति होती है, वो ज्ञान के उत्तर काल में होती है, वो भी संयोग और वियोग दो होती है। संयोग और वियोग दो होती है, इसमें भी संयोग में स्वकीय और परकीय दो भाव है, और परकीय भाव का बड़ा विचित्र बात है। अर्थ परकीय भाव तो व्यवचार है, उस व्यवचार नहीं है, परकीय भाव में आनंद विशेष है, क्योंकि निरंतर मिलने की इच्छा रहती है। स्वकीय भाव में मिलने की इच्छा नहीं रहती, सब जगह से मिल लो, परकीय भाव में तो मिलने की उत्कंठा रहती है, यार अवगुण दृष्टि होती नहीं, परकीय होती है उसमें अवगुण नहीं दिखता, ना पुरुष को स्त्री का दिखता ना स्त्री को पुरुष का दिखता, कभी से मिलना होता है, मिलने की उत्कंठा रहती है, हरदम चिंतन हरदम रहता है, यार दोष दिखता नहीं, घर में दिख रहे और बाहर कुछ है नहीं। स्वकीय में छोरा छोरी का ब्याह करो, घर में रहो, चीज लाओ, सब काम चलाओ, ये आफत रहती पुरुष पर। उस परकीय में कोई आस नहीं गिरता था, तुम बचना लगो मेरे छोरे छोरी का ब्याह करो, कुछ नहीं, उसकी कोई कामना नहीं है, कोई उसकी आवश्यकता ही नहीं है, उसमें तो केवल मिलन की उत्कंठा रहती है, वो उसने को उसे मिलने की इच्छा रहती है, और अवगुण होता नहीं, और प्रत्यक्ष में प्रेम बढ़ता है। श्री जी के साथ हम कहा था, मिले ही रहत मनु कबहू मिले ना, कब मन मिले ही नहीं उम्र भर में, ऐसे मिले ही रहत मन कबहू मिले ना, ये भी प्रारंभ है, ये वियोग है संयोग में। तो ये जागृत होती है ज्ञान के बाद, तत्व ज्ञान होने से माया सर्वथा निवृत्त हो जाती है, प्रकृति तब बोध होता है, तो वो प्रकृति वाला नहीं है, ये गुणों से रहित तत्व है। जैसे जिस जगह तय कहा था क्या भगवान की तो शुद्ध सत्वगुणी माया है, शुद्ध सत्वगुणी माया नहीं है। भगवान शंकर और विष्णु और ब्रह्मा ये उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, और संहार करने वाले, तो ये गुणों को स्वीकार करते हैं, गुणों के बस में नहीं है। किसी गुणों में शंकर तमोगुण के बस में तो रही है, ब्रह्मा रजोगुण के बस में तो रही है, भगवान विष्णु पालन शक्ति के बस में तो रही है, ये बस में नहीं है। ऐसी बस ही है, मालिक है, वो काम करते हैं। और वो क्या है, ये शिव विष्णु भी एक एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा विष्णु महेश है, दूसरे ब्रह्मांड में फिर विष्णु महेश है, तीनों तीन बार ब्रह्मांड में है। इस बार मनुष्य रूप आए बहुत बार आए, परम धीर ने लुभे लुभाए, कई बार आया विष्णु ब्रह्मा शंकर, पर मांगते ही नहीं की चलते ही नहीं चला, और रोते ही नहीं, उसे मांगने की थी नहीं हुई, इन्हों क्या मांगू मैं, पराग पर ब्रह्म पर राम और सीता है, तब उनसे सब कुछ कहा है अपने, जो मन की बात थी। तो ये विलक्षण बात है, अलौकिक बात है। अब विष्णु की भक्ति भक्ति होगी तो अच्छी बात है, भक्ति है, परंतु वो जो भक्ति है, जैसे गोस्वामी जी महाराज जिसको कहते हैं, वो जो इष्ट है राम जी का, वो गुणातीत इष्ट है। गुणातीत में विलक्षणता होती है, पढ़े हुए समझे, गुणातीत में कोई क्रिया होती ही नहीं, तो क्रिया नहीं होती तो संसार के प्रकृति की क्रिया नहीं होती, प्रकृति से अतीत भगवान में क्रिया करने शक्ति नहीं है, प्रकृति में भी अनंत शक्ति है, माया एवं सर्वसंभवात, और माया से अतीत में शक्ति नहीं है। लोग कहते हैं प्रभाव व्यापक है, वो एक जगह पर प्रकट हो सकता है, अरे वो अनंत जगह प्रकट एक साथ में हो सकता है, अग्नि एक साथ में हजारों लाखों जगह प्रकट हो जाए, अरे अग्नि खर्ची कुछ होती ही नहीं, कितने जगह प्रकट होती है, अग्नि लगा थोड़ी देर खिंचगी उठे, ऐसा होता तो अग्नि में भी ये शक्ति है, तो परमात्मा प्रकट होने में शक्ति खर्च होगी, एक जगह एक जगह हो गया, समझते नहीं अपनी अपनी बात करते, अच्छी बात है, कर चर्चा तो करते है भगवान की, निंदा कर चर्चा, बैर भाव में सुमर ही निश्चर, बैर भाव से मेरे सुमन करते कल्याण के भगवान मन गई, तो चौकी बात है, ये भी एक भक्ति है। बैर भाव से भगवान चिंतन होता है, प्रेम भाव से चिंतन होता है, दोनों बड़ा फर्क है। मधुसूदन चाहिए लिखा है, एक तो बैसाख का स्नान है, एक माघ का स्नान, माघ का भी स्नान का महात्म है, बैसाख का भी महात्म है, पर माघ में स्नान करो जल्दी ठापड़े कांपने लग जाए, मेरे काम पड़ा कुछ है, यहाँ जो हाथ से लंगोटी नहीं पहन सकते, कपड़ा नहीं पकड़ सकते, हाथ ही हो जाता है, और ऐसे ऐसे काले काले राग हो गए, खून जम जाता है, माघ का स्नान, अरे अभी बैसाख का स्नान बहुत होती है, मेरे मन वासी बैठ जाए, गंगा जी में बैठ जाए खूब, जब माघ के स्नान में, तो भक्तों का तो है बैसाख का स्नान, असुरों का है माघ का स्नान, भगवान का चिंतन दोनों को होता है, महात्म माघ का भी है बैसाख का भी है, और तो माघ का महात्म बड़े मुश्किल होती है, बैर भाव से करने में भय है द्वेष है, ये साथ में बड़े भयंकर होते हैं, उनमें भगवान का चिंतन होता है, प्रेम भक्तों का चिंतन होता है, बैसाख का स्नान है, ठंडक भी पहुंचती है, गर्मी शांत हो जाती है, महात्म होता है, महात्म कम नहीं होता, माघ के स्नान से महात्म कम नहीं है। तो इस वजह से भगवान से आज संबंध जुड़ने में राग सौकार भक्तों का संबंध हो जाए कल्याण हो जाए, उसमें कम नहीं है कल्याण में, पर माघ का स्नान है कर रहा, तो वो प्रेम भक्ति प्रगा, प्रेम भक्ति जो पैदा होती है, वो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षते समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति में लभते पराम, अब पराभक्ति प्राप्त होगी, ब्रह्मभूत पहले हुआ है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षते, कोई इच्छा नहीं कोई शोक नहीं है, समस्त सर्वेषु भूतेषु सब प्राणियों में समान रूप से स्थित है, फिर मद भक्ति लभते पराम, फिर मेरी परा भक्ति, और भक्तिया माम भी जाना थी या मान्य शासन तत्व, जो जैसा हूँ जैसा या वान मान जितना हूँ तत्व से हूँ उसको जानता है, फिर भी स्थिति मेरे प्रवेश होता है। तो ये भक्ति विलक्षण है, वो विलक्षण भक्ति ज्ञान होने से होती है, और भक्ति हृदय होने से भगवान ज्ञान देते हैं, वो तेषाम सतयुक्ताना भक्तराम प्रीति पूर्ण, केवल प्रेम पूर्ण, कोई इच्छा नहीं मुक्ति की, कुछ इच्छा नहीं है, भक्ति भक्तराम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये माम अपयान्ति, जिससे मेरे को प्राप्त हो जाए ऐसे तेसामे अनुकंपार्थम अहम अज्ञानतम तम नाशयाम न्यारो भावस्तो ज्ञान दीपे भाषा देवी के बाद ज्ञान दीपे के द्वारा भीतर में रहने वाले अज्ञान अंधकार को दूर करते जाऊ, अपने आप को दिल देता है प्रेम देता है, वो थोड़ी ज्ञानी को मिल जाए। ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ बताया प्रेम भक्ति, हर एक को नहीं मिलती है ज्ञानियों के लिए, एक पुस्तक पढ़ने से मिल जाए तो विश्वस्ती है क्या बात है, पुस्तक पढ़ सकते हैं खरीद गई तो वो प्रकृति अंतर्गत है। पर जो श्रवण है, मनन है, निर्ध्यासन है, ध्यान है, समाधि है, प्रकृति से अतीत होता है, कारण शरीर में समाधि होती है, तब उस समाधि उत्थान दो अवस्था होती है, ऐसे अतीत होने पर सहज अवस्था होती है, उसमें अतीत नहीं होती, उत्थान नहीं होता, वो अखंड समाधि होती है, सहज समाधि है वो। साधु भाई सहज समाधि भली, कबीर साहब ने कहा है सहज समाधि, उसे उत्थान समाधि दो नहीं होती कभी, या दो गिनते सफल दो होती है, उत्थान होता है फिर योग की समाधि में उत्थान और समाधि दो तरीका होता है, ज्ञान का जहाँ प्राप्त हो जाती जहाँ वर्ण है वो सहजावस्था, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा सात चिंता से, तीर्थ यात्रा धवा धामा, ये तो उत्तमा सहजावस्था है, वो प्रकृति के संबंध से रहित होती है, और समाधान मिथ्या में ये दो चीज होती है कारण शरीर के संबंध से, कारण शरीर का संबंध न हो तो वो अवस्था होती ही नहीं, वो एक ज्ञान अवस्था प्रेम अवस्था होती है, स्वतः सूर्य प्रेम होता है, ये बात है। अब बताओ क्या आपके प्रश्न बाकी रहा, ये हो तो पूछ घंटा से, केवल लालसा से मिलने वाली ये अवस्था है, आपकी तरह उद्योग करने से नहीं, क्रिया साध्य नहीं है, भीतर की उत्कंठा लालसा भूख रहा न जाए, जैसे मीरा भाई हरी बिना रहो रह न जाए, हेरी मारी हरी बिना रह न जाए, लग गया प्रेम बिहारी सू माने देखा बिना रहो रह न जाए, इन रोक है ऐसे भीतर में लाए लग जाए, लाए आग लग जाए, ना नींद आवे, ना भूख लगे, ना बात सुहावे, ना संसारी कुछ सुहाई नहीं, व्याकुल जैसा डोले, रोवे कभी का हंसे कभी कुछ करे, चित दसन थी वसंती अलौकी का वृद्ध उदगाए थी नृत्य तेज मत भक्ति हो तो भूलम पुना थी, गाता है रोता है कभी चिल्लाता है मस्ती आया हुआ, ऐसा भगवान पूरा लोगों को बहुत जल्दी यह सेवते माम अगुणम गुणात्परम हृदय कदा वा यदि वा गुण तुम सोहम स्वपादन रेणु स्पर्शन पूरा लोग यथा रवि, ऐसे कृष्ण अवस्था थे केवल उत्कंठा एक केवल लालसा, अरे वो केवल कब होती है संसार की किंचित मात्र की वासना नहीं रहे तब केवल होती हो, संसार की वासना रहे केवल नहीं होती, ठीक है वो भी किया जाए तो निष्फल नहीं जाएगी, भक्ति कैसे की जाए, राम इतना नाम उच्चारण किया है ये भी निष्फल नहीं जाएगी, कोई फल होगा, भगवान का चिंतन किया है, भगवान का नाम लिया है, बहुत नाम लो से आपकी शक्ति कितनी शक्ति है, दावत कर तुम न सको याद पात की पात कर देना है, ऐसे भी निष्फल शक्ति है। माताओं करे कृपा तो अपने छोरों ने जिन्हें उतार दे, बड़ी कृपा होगी सारी, संस्कृत हो जाए, शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए जिन्हें संस्कार होने से, ऐसी कृपा करो। भाई लोगों को चाहिए कि जो बड़ी अवस्था हो गए हैं उनकी प्रायश्चित होता है, एक तो अवस्था ज्यादा हो जाए तो प्रायश्चित होता है, एक विवाह हो जाए तो प्रायश्चित होता है, एक पिता के इतने नहीं हो तो प्रायश्चित होता है, तीन प्रायश्चित है विशेष, पिता के न हो जिन्हें और बेटा उसके प्रायश्चित करना पड़ेगा, ऐसे चिन्ह मेरी हो गया विवाह तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। एक अवस्था यदि बताए उस अवस्था ज्यादा हो जाए तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। ऐसा प्रायश्चित करा कर ब्राह्मणों को पूछ लो, कोई गौधान कराते हैं, कोई गायत्री का जप कराते हैं, इसे प्रायश्चित करके भेज दे लो। तो जिनके देव नहीं है बड़ी अवस्था होगी उनको भी एक संस्कार तो कर दो। गंगा जी के किनारे रुपया लागे मेरा सैकड़ा आठ कुछ नहीं लागे, कोड़िया लागे नहीं। और गंगा जी के किनारे पवित्र स्थान बहुत ही पवित्रता से घर पर करो तो रुपया लागे और पवित्रता इतनी आवेगी नहीं। गंगा जी का स्थान कहाँ आवेगा? सेठों की संस्था, सेठों ने प्रकाश कर दिया है, सत्संग और कल्याण और पुस्तकों के द्वारा अंधकार दूर कर दिया है। लोगों को कितना आनंद आता है पुस्तकों से, अब उस पुस्तकों के द्वारा उस बात वो साक्षात स्थान सेठ होगा। उसमें तेलुगु लेना है, गंगा जी किनारा, उत्तराखंड की भूमि, सत्संग का समारोह, ये तो कोई भाग्यशाली नहीं मिलता, हर को मिलता नहीं है ऐसी बात। पंडित जी महाराज, राम मोहन जी महाराज पता है, ऐसे ब्राह्मण बहुत कम मिलेंगे, ऐसे शुद्ध निर्मल ब्राह्मण है। इनके पिताजी थे, मेरे दर्शन किए हुए हैं, कलकत्ते में जाता था, आया थे देव ने कुछ नहीं लिया महाराज, इतने धनी आदमी सब उसने कराई करी नहीं लिया। जबरदस्ती जूती पहनाई कि महाराज कपड़े की जूती जरूरी पहन ली, मेरा पैसा भी गाड़ी है किसी ने फेंक दिया। मदन मोहन जी महाराज, राम मोहन जी के पिता, बड़े निर्मल संत थे, उनके पुत्र है, ऐसा दिल देने वाला कहाँ मिलेगा, ऐसा मौका है। इस वास्ते बहनों को, भाइयों से आए, अपने बच्चों को, अपने पति को, पुत्र को, भाई संबंधी कुटुंबी को लगाओ किस तरह से जो अपने दिल को ले ले पवित्र हो जाए। अब सुना दो, भी सुना दो, शेर जी का विशेष आग्रह, इतने वो संस्कार हो जाए कम से कम संध्या के अधिकारी हो जाओ, वेद पढ़ने के अधिकारी हो जाओ, बिना यज्ञोपवीत के वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है पंडित के लड़के को भी।